राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवाद। राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है और इस संबंध में उनकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस संबंध में उदारवाद के प्रभुत्व रूप में दो रूपों को देखा जा सकता है, पहला परंपरागत उदारवाद, दूसरा आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। पहला परंपरागत उदारवाद। मूल रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व ही स्वतंत्रता ही रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परंपरागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचार कहा जा सकता है। प्रोफेसर हॉब हाउस ने अपने उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के छह मूल सिद्धांत बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता शासकीय सत्ता का विरोध करती है और इसका कथन है कि व्यक्तियों को नहीं वरन कानून को प्रभुत्व प्राप्त होना चाहिए। मध्ययुग की सामंती व्यवस्था में सामंत वर्ग के वर्गीय विशेषाधिकार का बोलबाला था। व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामंत वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनमाने तरीके से सताया जाता, उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता और उनकी संपत्ति को छीन लिया जाता था। नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, वित्तीय स्वतंत्रता। मध्ययुग में निरंकुश शासकों द्वारा अनेक प्रकार जनता पर मनमाने कर से कर लगा दिए जाते थे, अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ इस बात पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों के इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाए जाएं। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसलिए उनके द्वारा यह कहा गया था कि नागरिकों पर जो कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। इस अर्थ है कि उदारवादी शासन 18वीं सदी के अंत में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसी प्रश्न को लेकर आरंभ हुआ था और इनका प्रसिद्ध नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादियों के द्वारा सदैव ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। उनके द्वारा शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत स्वयं अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तियों को जीवन और उनके रहन सहन में राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सामाजिक हित की दृष्टि से इस प्रकार का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक न हो गया हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का तो कहना है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के साथ तरह तरह के प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। यदि उसके इन प्रयोगों का समाज के अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। छवां, सामाजिक स्वतंत्रता। उदारवादी चिंतन में सामाजिक स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व रहा है। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, पैसे, व्यवसाय, उच्च शिक्षा की सुविधाएं और निगम अथवा समुदाय की सदस्यता वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वरन इसके द्वारा सबके लिए खुले होने चाहिए। पांचवा, आर्थिक स्वतंत्रता। परंपरागत उदारवाद के संदर्भ में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मध्ययुग के सामंती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं तथा संपत्ति के क्रय विक्रय भाड़े पर श्रमिक रखने तथा धन उधार लेने और धन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। उदारवादियों ने इन्हें हटाने की मांग की और इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपना लिया जाना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में संविदा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। छवा, पारिवारिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को विशेषकर विवाह तथा संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता पिता को उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। सातवां, जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी विचारक राष्ट्रों के आत्मनिर्माण के संदर्भ में प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक तथा प्रशासकीय दोनों क्षेत्र में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे, किंतु इस संबंध में एक विशेष और आपत्तिजनक बात यह देखने में आई है कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध यूरोपीय राष्ट्रों तथा गोरी जातियों तक ही सीमित था। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद राज्य द्वारा एक दूसरे राज्य के बल का प्रयोग विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक समीप आने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। नौवां, राजनीतिक स्वतंत्रता। हाब हाउस के अनुसार उदारवाद की यह सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन थी, राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है और इसके अंतर्गत ये चार चीज़ें सम्मिलित हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर स्वतंत्रतापूर्वक विवाद करने का अधिकार। इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पर्यायवाची है। परंपरागत उदारवादी इन सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए इसे बहुत कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन कहा जा सकता है।